नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विपक्षी दलों ने विधेयक पर आपत्ति व्यक्त की। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार सुगमता के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान 7.2% पर बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के कन्नूर और वायनाड जिलों में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज रात अंतरिम सरकार शपथ लेगी और पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज शाम कांस्य पदक के लिए स्पेन से खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए निचले सदन में विधेयक पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों और कामकाज के साथ साथ वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, वामदल और अन्य ने इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि ये कठोर है और देश के संघीय ढांचे पर हमला है। समाजवादी पार्टी के नेता हबीबुल्लाह ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि वक्फ एक धार्मिक मामला है और ये कानून धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप है। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने इसे असंवैधानिक बताया और ये संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि ने भी इस कानून का विरोध किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने विधेयक को वापस लेने या आगे की जांच के लिए इसे स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भेदभावपूर्ण विधेयक बताया है। वहीं भाजपा ने इस बात पर जोर दिया है कि ये विधेयक उन अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया है। गरीब अल्पसंख्यकों की कई शिकायतें थीं कि उनकी संपत्ति वक्फ बोर्डों ने ले ली है। राज्यसभा में आज विपक्षी दलों ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर वॉकआउट किया। सुबह जब सदन शुरू हुआ तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सदस्यों ने उच्च सदन से वॉकआउट किया। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के और खासकर टीएमसी के सदस्य डेरेक ओब्रायन के आचरण की निंदा की।
मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं।
सभापति ने डेरेक ओब्रायन को चेतावनी भी दी। श्री धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वे खुद तथा पूरा देश विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने से दुखी हैं, पर इस मामले में राजनीति करना कुश्ती का अपमान है। श्री धनखड़ ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वे विनेश को वो पूरा सम्मान देगी जो एक पदक विजेता को दिया जाता है। राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी विपक्ष के आचरण की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी सदस्यों की सभापति के साथ बर्ताव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है।
मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है। जब सारा देश विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है।
सरकार ने भारतीय छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि विदेशों में भारतीय छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय मिशन उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को मदद पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के 77% से ज्यादा घरों में नल से जल उपलब्ध कराया है। लोकसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में ये योजना शुरू की थी।
आरोग्य की दृष्टि से भी देखेंगे तो करीब 8,00,000 करोड़ की बचत योजना के कारण हुए भी WHO का रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर भी कह सकता हूँ योजना अत्यंत आवश्यक थी और 15 करोड़ घरों में पहुंचा है। तो बाकी का भी जो काम राज्यों के द्वारा आगे बढ़ रहा है उसके अंदर सपोर्ट में है और जल्दी से करेंगे।
विपक्षी दलों के सांसदों ने प्याज और आलू की कीमतों को लेकर आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की भी मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपनी न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान वेलिंगटन स्थित गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सीमा शुल्क सहयोग, परंपरागत चिकित्सा और नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और न्यूजीलैंड के नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर सहमति बनी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में आसानी होगी। न्यूजीलैंड ने इस क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी अनुमोदन किया। दोनों देश जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम तकनीकी का आदान प्रदान करने पर भी सहमत हुए। भारत और न्यूजीलैंड ने कई और क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान के तरीकों पर विचार विमर्श किया। वेलिंगटन से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
हाँ जी, सुनती हो आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है, 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी तीसरी द्विमासिक समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान को 7.2% पर यथावत रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 6 में से 4 सदस्यों के बहुमत से रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।
रेसिलियंट एंड स्टेडी ग्रोथ इन जीडीपी इनेबल्स मॉनेटरी पॉलिसी टू फोकस अनएम्बिगुअसली ऑन इन्फ्लेशन। इट मस्ट कंटिन्यू टू बी डिसइन्फ्लेशनरी एंड रेजोल्यूट इन इट्स कमिटमेंट टू अलाइनिंग इन्फ्लेशन टू द टारगेट ऑफ 4% ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। अकॉर्डिंगली द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% इन दिस मीटिंग।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति में मोटे तौर पर गिरावट का रुख है, तीसरी तिमाही में समग्र मुद्रास्फीति और नीचे आ सकती है। उन्होंने बैंकों को सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि जमा में गिरावट से बैंकों को संरचनात्मक तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1,00,000 रूपये से बढ़ाकर 5,00,000 रूपये करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को सुबह नई दिल्ली से कन्नूर हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से वायनाड के कलपट्टा जाएंगे। कलपट्टा में वे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को वापस दिल्ली लौटेंगे। इस बीच केरल और कर्नाटक की सैन्य इकाइयों से आए लगभग 500 सैन्यकर्मी वायनाड से वापस लौटेंगे। नवनिर्मित बेली ब्रिज को मजबूत करने के लिए एक छोटी टीम और हेलीकॉप्टर खोज दल और कुछ दिनों तक वायनाड में रहेगा। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने आज नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सिक्किम से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का आज कोलकाता में निधन हो गया। वे गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उन्हें एक राजनीतिक दिग्गज बताया जिन्होंने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पेश किया। दोनों विधेयक कल लोकसभा से पारित हो गए थे। राज्यसभा में इस पर चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन से उत्साहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। उन्होंने देश में 3-4 दिन में स्थिति सामान्य होने की संभावना व्यक्त की। इस बीच सेना ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि अगर किसी को भी तोड़फोड़, हिंसा और हत्या की धमकी मिले तो वे निकटतम सैन्य शिविर में संपर्क कर सकते हैं। ब्रिटेन में साउथपोर्ट में चाकूबाजी के बाद कई दिनों की अशांति के बाद देशभर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लंदन, ब्रिस्टल, ब्राइटन, बर्मिंघम, लिवरपूल, हेस्टिंग्स और वाल्थमस्टो जैसे शहरों और कस्बों में धुर दक्षिणपंथी प्रदर्शनों के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने देश में व्यवस्था बनाए रखने और दक्षिणपंथी प्रदर्शनों का मुकाबला करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की है। सऊदी अरब ने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या की निंदा की है और इसे ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया है। इस घटना को लेकर सऊदी अरब की ये पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण कल अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के 50 किलोग्राम वर्ग में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से पहले करीब 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई थी। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में आज सभी की निगाहें पुरुषों के जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर रहेंगी। वे अपने दूसरे ओलंपिक पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक के लिए स्पर्धा करेगी। उसका मुकाबला स्पेन की टीम से है। गोल्फ के महिला वर्ग में दीक्षा डागर और अदिति अशोक आज मैदान में खेलेंगी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि शनिवार तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा का अनुमान है। विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान देश के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल शाम बहुत हल्की वर्षा हुई और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में आज भी हल्की वर्षा होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी। विपक्षी दलों ने विधेयक पर आपत्ति व्यक्त की। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार सुगमता के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान 7.2% पर बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के कन्नूर और वायनाड जिलों में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज रात अंतरिम सरकार शपथ लेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।